एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक तरह से विवादास्पद विचारक की बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, डैनियल क्लेमेंट डेनेट तृतीय।
डैनियल डेनेट नाम शायद कई लोगों ने सुना होगा। हाल ही में अप्रैल 2024 में उनका देहांत हुआ।
जी, और उनके जाने के बाद भी उनके जो विचार हैं, खासकर चेतना पर, स्वतंत्र इच्छा पर, वो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।
हाँ, मतलब उन्होंने दर्शन और विज्ञान के बीच आप कह सकते हैं एक पुल बनाने की कोशिश की, हमेशा ये कोशिश की कि ये दोनों अलग अलग न रहें।
बिल्कुल, उन्होंने सीधी साधी सोच को चुनौती दी, पूछा कि भाई ये जो हमारा दिमाग है, ये जो मैं वाली फीलिंग है, ये है क्या आखिर?
सही कहा। तो आज हम हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर उनके जीवन और उनके कुछ चौंकाने वाले विचारों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि डेनेट के जो थोड़े जटिल पर बहुत जरूरी विचार हैं उनको आसानी से समझ सकें, खास तौर पर चेतना और स्वतंत्र इच्छा वाले।
बिल्कुल, तो शुरू कहाँ से करें, उनके दौर से, जिस माहौल में वो सोच रहे थे?
हाँ, वो जरूरी है। देखिए, डेनेट के विचार कोई हवा में नहीं जन्मे थे। उनका जो बौद्धिक सफर शुरू हुआ वो 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा था, और वो दौर था मतलब बड़ी उथल पुथल का, कॉग्निटिव क्रांति जिसे कहते हैं।
कॉग्निटिव क्रांति मतलब
जब मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, कंप्यूटर साइंटिस्ट सब मिलकर मन को समझने की कोशिश कर रहे थे। व्यवहारवाद जो था ना,
हाँ, जो कहता था सिर्फ व्यवहार देखो, अंदर क्या है मत सोचो।
बिल्कुल, वो पीछे जा रहा था, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भर रहा था। न्यूरोसाइंस में तरक्की हो रही थी,
और चेतना, स्वतंत्र इच्छा, इन सब पर गर्मा गर्म बहसें चल रही थी।
जोरदार बहसें, तो माहौल एकदम तैयार था डेनेट जैसे विचारक के लिए।
अच्छा, और कौन लोग थे जिन्होंने उनकी सोच पर असर डाला या जिनके साथ उनकी वो बौद्धिक टक्कर हुई?
हाँ, कई लोग थे। ऑक्सफोर्ड में उनके गुरु थे गिलबर्ट रायल, उनका बहुत गहरा असर था। रायल ने वो जो मन शरीर को अलग अलग मानने वाली बात है ना, डुअलिज्म।
हाँ, मशीन में भूत वाली बात की शरीर में कोई आत्मा ना मन अलग से बैठा।
हाँ,
है
उसकी रायल ने जबरदस्त आलोचना की थी, और यही डेनेट के काम की एक तरह से नींव बनी। फिर हार्वर्ड में WVO क्विन थे, वो भी प्रभावशाली थे।
और जिनके साथ बहसें चली
समकालीनों में देखें तो जॉन सर्ल, चेतना पर उनकी और डेनेट की नोकझोंक तो मशहूर है।
हाँ, सुना है।
डेविड चालमर्स, जो चेतना की कठिन समस्या की बात करते हैं, वो डेनेट के एक बड़े आलोचक रहे।
अच्छा।
दूसरी तरफ पैट्रिशिया और पॉल चर्चलैंड जैसे दार्शनिक उनके साथी थे, वो भी मानते थे कि हमारी रोजमर्रा की मन वाली भाषा शायद वैज्ञानिक ना हो। और डगलस हॉफस्टैटर का नाम लेना जरूरी है,
गोडेल, एशर, बाख वाले।
हाँ वही, वो उनके करीबी दोस्त और सहयोगी थे।
तो मतलब दर्शन, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान सब एक साथ आ रहे थे।
बिल्कुल, एक संगम था, और डेनेट इसी संगम के कह सकते हैं बीच में थे, इसीलिए उनका काम इतना इंटरडिसिप्लिनरी है।
आपने न्यू एथिज्म का भी जिक्र किया था शुरू में।
हाँ, वो भी एक पहचान थी उनकी। डेनेट को रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस और क्रिस्टोफर हिचिंस के साथ न्यू एथिज्म के चार घुड़सवारों में गिना जाता था।
अच्छा।
ये सभी धर्म की मतलब वैज्ञानिक और तार्किक आलोचना के लिए जाने जाते थे। मानते थे कि धर्म को भी एक प्राकृतिक घटना की तरह स्टडी किया जा सकता है।
चलिए अब जरा उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं। 1942 बोस्टन में जन्म, परिवार भी काफी पढ़ा लिखा था।
हाँ, पिता इतिहासकार थे, राजनयिक भी, माँ शिक्षिका और संपादक थीं। बचपन का कुछ हिस्सा लेबनान में भी बीता।
लेकिन पिता का देहांत जल्दी हो गया था, है ना?
जी।
कोई विमान हादसा?
हाँ, जब डेनेट सिर्फ 5 साल के थे, ये बड़ा झटका रहा होगा। फिर माँ ने ही उन्हें मैसाचुसेट्स में पाला।
पढ़ाई कहाँ हुई?
पहले फिलिट्स एक्सेट्रा अकेडमी, जो काफी जानी मानी जगह है, फिर हार्वर्ड से दर्शन शास्त्र में बीए,
और फिर वो ऑक्सफोर्ड गए, गिलबर्ट रायल से वहीं मिले।
हाँ, फुलब्राइट फेलोशिप पर ऑक्सफोर्ड गए और रायल के अंडर में ही डीफिल की। और जैसा हमने कहा, ये मुलाकात बहुत अहम थी,
जहां उन्हें वो दिशा मिली जिसने उनके भविष्य के काम को तय किया, मन और शरीर को अलग अलग मानने से इनकार।
बिल्कुल, रायल का वो आइडिया कि मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि हमारी क्षमताओं और व्यवहार का ही नाम है, ये डेनेट के भौतिकवादी मतलब मटीरियलिस्ट नजरिए की चाबी बना।
फिर ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर वो अमेरिका लौटे और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया।
हाँ, 1971 में, और फिर लगभग 50 साल वहीं रहे, प्रोफेसर बने, सेंटर फॉर कॉग्निटिव स्टडीज की सह स्थापना भी की रे जैकेंडॉफ के साथ।
तो अब आते हैं उनकी मुख्य विचारों पर जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे और शायद सबसे विवादास्पद भी, चेतना, कॉन्शियसनेस, क्या कहा उन्होंने इस बारे में?
यहीं पर डेनेट सबसे ज्यादा कह सकते हैं रेडिकल हो जाते हैं. उनका नजरिया एलिमिनेटिव मटीरियलिज्म का एक रूप कहलाता है.
एलिमिनेटिव मटीरियलिज्म यानी?
आसान भाषा में कहें तो डेनेट का मानना था कि चेतना जैसा हम उसे आमतौर पर समझते हैं, मतलब वो निजी अंदरूनी एहसास,
जैसे सेब का लाल दिखना या कॉफी की महक.
हाँ वही, जिसे दार्शनिक क्वालिया कहते हैं. डेनेट ने कहा वो उस रूप में असल में मौजूद ही नहीं है.
एक मिनट, मतलब वो एहसास, वो अनुभव जो हमें होता है वो है ही नहीं.
हाँ.
ये कैसे? दर्द तो महसूस होता है.
नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें अनुभव नहीं होता. वो कह रहे हैं कि उस अनुभव को किसी जादुई गैर भौतिक चीज, किसी क्वालिया की तरह समझना गलत है. उनके हिसाब से जिसे हम चेतना या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं, वो हमारे दिमाग में चलने वाली जटिल भौतिक और कंप्यूटेशनल प्रक्रियाओं का ही नतीजा है बस.
तो वो कठिन समस्या वाली बात कि भौतिक दिमाग से निजी एहसास कैसे पैदा होता है,
उसे डेनेट ने एक छद्म समस्या, एक स्यूडो प्रॉब्लम कहा. जैसे हम पूछें कि जब कोई खड़ा होता है तो उसकी गोद कहाँ चली जाती है.
अच्छा.
गोद कोई चीज थोड़ी थी जो गायब हो गई, वो तो बैठने की अवस्था का नतीजा थी. वैसे ही चेतना कोई अलग चीज नहीं, वो दिमागी प्रक्रियाओं का फंक्शन है, नतीजा है.
तो वो चेतना को गायब नहीं कर रहे बल्कि उसे देखने का हमारा फ्रेमवर्क बदल रहे हैं.
बिल्कुल.
और इसी से जुड़ा है उनका मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल.
हाँ बिल्कुल, ये उस आम सोच को चुनौती देता है जिसे डेनेट ने कार्टेशियन थिएटर कहा.
कार्टेशियन थिएटर मतलब दिमाग में कोई सिनेमा हॉल जैसा.
हाँ, कि दिमाग में कोई एक सेंट्रल जगह है जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आती है, स्क्रीन पर चलती है और एक दर्शक यानी मैं उसे देखता है.
हाँ.
डेनेट कहते हैं ऐसा कोई सेंट्रल थिएटर है ही नहीं, बल्कि दिमाग में हर पल जानकारी के कई ड्राफ्ट्स या कह लें संस्करण, वर्जन, वो पैरेलल में प्रोसेस होते रहते हैं, एडिट होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं
लगातार.
हाँ लगातार. और जिसे हम अपना चेतन अनुभव कहते हैं वो इन्हीं बदलते हुए ड्राफ्ट्स का एक तरह का कह सकते हैं नतीजा है. कोई एक फाइनल फिक्स्ड पिक्चर नहीं बनती.
बाप रे, ये तो दिमाग को सोचने का एकदम ही अलग तरीका है. मतलब कोई एक मैं नहीं है जो सब देख रहा है.
उस तरह का एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड मैं नहीं है जैसा हम सोचते हैं.
खैर, अगर चेतना ऐसी है तब तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, उसका क्या? क्या वो भी बस एक इल्यूजन है?
फ्री विल पर डेनेट का नजरिया कॉम्पैटिबिलिज्म कहलाता है.
कॉम्पैटिबिलिज्म?
ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है. डेनेट मानते थे कि स्वतंत्र इच्छा और नियतत्ववाद यानी डिटर्मिनिज्म,
कि सब कुछ पहले से तय है, हर घटना का कोई पिछला कारण है.
हाँ, वो मानते थे कि ये दोनों चीजें एक साथ संभव है, कंपैटिबल है.
लेकिन कैसे? अगर सब कुछ तय है तो हम स्वतंत्र कैसे हुए?
डेनेट कहते थे कि हमें उस तरह की कोई जादुई फ्री विल की जरूरत नहीं है जो फिजिक्स के नियमों से बिल्कुल आजाद हो, वो संभव भी नहीं है. बल्कि हमारे लिए जो जरूरी फ्री विल है वो है हमारी क्षमता सोच समझकर अपने कारणों के आधार पर बिना किसी बाहरी जबरदस्ती के चुनाव करने की क्षमता.
अच्छा.
और ये क्षमता, ये कैपेसिटी प्राकृतिक चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन से विकसित हो सकती है और ये पूरी तरह से भौतिक दुनिया के नियमों के अंदर ही काम कर सकती है.
तो मतलब अगर दुनिया नियतत्ववादी है भी तब भी हम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं?
हाँ, उनके अनुसार नियतवाद का सच होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी या स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता. स्वतंत्रता का मतलब नियमों से परे होना नहीं बल्कि अपने कारणों से सोच समझकर एक्ट कर पाना है.
ये भी काफी क्रांतिकारी सोच है, आम धारणा से बिल्कुल अलग. उनका एक और बड़ा आइडिया था इंटेंशनल स्टैंस. ये क्या चीज है?
इंटेंशनल स्टैंस?
हाँ,
ये असल में एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, समझने की रणनीति. जब हम किसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मान लीजिए शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर हो.
हाँ?
तो हम अक्सर उसके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए ये मान लेते हैं कि उसके कुछ इरादे हैं, कुछ विश्वास हैं, कुछ इच्छाएं हैं और वो लॉजिकली काम करेगा.
जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर सोच रहा है कि मेरा अगला मूव क्या होगा.
बिल्कुल. डेनेट कहते हैं कि ये मानकर चलना ही इंटेंशनल स्टांस है. हम उस सिस्टम के प्रति एक इरादे वाला रवैया अपनाते हैं. अब जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर सच में विश्वास या इच्छा जैसी कोई चीज हो, लेकिन ये स्टांस, ये रवैया अपनाने से हमें उसके व्यवहार को समझने और प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है.
तो ये एक तरह का उपयोगी टूल है, वास्तविकता का लिटरल डिस्क्रिप्शन नहीं.
एग्जैक्टली, एक बहुत ही उपयोगी प्रिडिक्टिव टूल.
समझ गया. और इन सब विचारों के पीछे डार्विन का कितना बड़ा हाथ था? आपने शुरू में कहा था कि विकासवादी सोच उनके लिए बहुत जरूरी थी।
हाँ, बहुत बड़ा हाथ। विकासवादी सोच डेनेट के पूरे दर्शन की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। वो मानते थे कि मन, चेतना, भाषा, नैतिकता, ये सब जो जटिल चीजें हैं, ये किसी डिवाइन डिजाइनर ने नहीं बनाई,
बल्कि
ये धीरे धीरे लाखों सालों में प्राकृतिक चुनाव की अंधी प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनी,
और इसीलिए उन्होंने डार्विन के आइडिया को सार्वभौमिक एसिड कहा।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा एसिड जो धीरे धीरे हमारे पुराने ट्रेडिशनल विचारों को गला देता है, चाहे वो ईश्वर का विचार हो, आत्मा का हो, या किसी खास उद्देश्य का। वो हर चीज को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के नजरिए से देखने में मदद करता है,
और यही वजह है कि वो दर्शन में भी वैज्ञानिक सोच और सबूतों पर इतना जोर देते थे।
हाँ, वो एम्पिरिकली इन्फॉर्म्ड फिलॉसफी की वकालत करते थे। कहते थे कि दार्शनिकों को साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, AI, इन सब के नतीजों को गंभीरता से लेना चाहिए।
और वो इंट्यूशन पंप्स का भी इस्तेमाल करते थे। वो क्या थे?
हाँ, इंट्यूशन पंप्स वो मजेदार विचार प्रयोग होते थे, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, जिनका मकसद होता था हमारी जो सहज बुद्धि है, जो इंट्यूशन है, उसे चुनौती देना, हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करना।
अच्छा, डेनेट ने अपने इन सब विचारों को कई किताबों में लिखा। कुछ खास किताबों का जिक्र कर सकते हैं?
हाँ जरूर। उनकी पहली किताब थी कंटेंट एंड कॉन्शियसनेस, 1969 में आई। उसने नींव रखी, फिर ब्रेनस्टॉर्म्स 1978 आई, जिसमें चेतना, इच्छा शक्ति, AI, इन पर कई प्रभावशाली निबंध थे।
हॉस्टाटा के साथ भी एक किताब थी।
हाँ, द माइंड्स आई 1981, डगलस हॉफस्टाटा के साथ मिलकर एडिट की थी। इसने इन मुश्किल विषयों को आम पाठक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, बहुत पॉपुलर हुई थी।
फिर स्वतंत्र इच्छा पर एल्बो रूम 1984।
हाँ, जिसमें उन्होंने अपने कंपैटिबलिस्ट विचारों को और विस्तार से समझाया।
और फिर आई वो किताब जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड 1991।
बिल्कुल, यही वो किताब है जिसमें उन्होंने मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल पेश किया और क्वालिया को सिरे से खारिज किया। इसने उन्हें फिलॉसफी की दुनिया में एक तरह का रॉकस्टार तो बनाया, पर बहुत सारे दुश्मन भी बना दिए।
हल्की हंसी।
हाँ, समझा जा सकता है।
इसके बाद आई डार्विन्स डेंजरस आइडिया 1995। इसमें उन्होंने विकासवाद के गहरे दार्शनिक असर की पड़ताल की, और धर्म पर भी उन्होंने लिखा।
हाँ, ब्रेकिंग द स्पेल, रिलीजन एज अ नेचुरल फिनोमेना 2006। इसमें उन्होंने धर्म को एक प्राकृतिक घटना की तरह समझने और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की वकालत की।
और हाल की किताबों में
इंट्यूशन पंप्स एंड अदर टूल्स फॉर थिंकिंग 2013, जिसमें उनके कई विचार, प्रयोग और सोचने के तरीके जमा हैं, और फ्रॉम बैक्टीरिया टू बाख एंड बैक 2017, जो उनके जीवन भर के विचारों का एक तरह से सार है मन और संस्कृति के विकास पर।
जाहिर है इतने क्रांतिकारी विचार थे तो समकालीन विचारकों से असहमति तो रही होगी।
बिल्कुल, टकराव तो थे ही। जैसा हमने पहले बात की, डेविड चार्मर्स, थॉमस नेगल जैसे दार्शनिक जो मानते हैं कि चेतना का एक गैर भौतिक पहलू है, वो डेनेट के कट्टर विरोधी थे।
जॉन सॉल का भी जिक्र हुआ था।
हाँ, जॉन सॉल तो कहते थे कि डेनेट ने चेतना को समझाया नहीं, उसे गायब ही कर दिया, क्योंकि सॉल मानते हैं कि चेतना दिमाग की एक असली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है।
और स्वतंत्र इच्छा के मुद्दे पर
जो लोग लाइबर्टेरियन फ्री विल मानते हैं, मतलब कि हमारी इच्छाएं किसी भी पिछले कारण से बंद ही नहीं है, डेनेट उनके विचारों को इनकंसिस्टेंट मानते थे।
लेकिन कुछ साथी भी थे।
हाँ, जैसे चर्चलैंड्स का जिक्र किया था, वो एलिमिनेटिव मटेरियलिज्म में उनके साथी थे, और रिचर्ड डॉकिंस जैसे विकासवादी विचारक और नास्तिक, वो उनके विचारों से काफी हद तक सहमत थे।
तो कुल मिलाकर डेनेट की विरासत क्या है? आज 2024 में उनके निधन के बाद उनके विचार कितने प्रासंगिक लगते हैं?
विरासत तो बहुत गहरी और फैली हुई है। मन का दर्शन, कॉग्निटिव साइंस, AI एथिक्स, धर्म का अध्ययन, नैतिकता, इन सब पर उनका गहरा असर है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने दर्शन को, मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर सोचने वाली चीज से निकालकर लैब से, साइंटिफिक खोजों से जोड़ने पर बहुत जोर दिया।
और आज की दुनिया में, AI वगैरह के दौर में,
आज तो उनके विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताएं बढ़ रही हैं, मशीन लर्निंग है, न्यूरोसाइंस हमें दिमाग के बारे में रोज नई बातें बता रहा है। तो डेनेट के सवाल और उनके जवाब, जैसे क्या मशीनें चेतन हो सकती हैं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
अगर हो सकती हैं तो उनके अधिकार क्या होंगे? हमारी अपनी चेतना और फ्री विल की वैज्ञानिक समझ का हमारे कानून, हमारी नैतिकता पर क्या असर पड़ेगा? ये सब डेनेट के उठाए हुए मुद्दे हैं जिनसे आज हम जूझ रहे हैं।
लेकिन जैसा आपने कहा, उनके काम पर विवाद भी बहुत रहे, उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया गया।
हाँ बिल्कुल, विवाद तो उनके काम का हिस्सा थे और शायद रहेंगे भी, खासकर चेतना के सब्जेक्टिव पहलू क्वालिया को नकारने पर उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई।
लोगों को लगा कि उन्होंने इंसान होने के सबसे जरूरी अनुभव को ही खारिज कर दिया।
हाँ, बहुतों को ऐसा लगा। फिर कुछ आलोचकों ने कहा कि वो विकासवादी तर्कों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर चीज को एडेप्टेशन मान लेते हैं, ने बहुत ज्यादा रिडक्टिव मतलब जरूरत से ज्यादा सरल और अपर्याप्त माना।
लेकिन ये विवाद भी शायद दिखाते हैं कि उनके विचार कितने मौलिक और उत्तेजक थे।
बिल्कुल, उन्होंने लोगों को अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया, और यही एक बड़े दार्शनिक का काम होता है।
उनके कुछ कोट्स भी बड़े मशहूर हैं।
हाँ।
एक तो आपने बताया था विज्ञान और दर्शन के रिश्ते पर।
हाँ, ऐसा कोई दर्शन मुक्त विज्ञान नहीं होता, केवल वही विज्ञान होता है जिसके दार्शनिक बोझ को बिना जांचे स्वीकार कर लिया जाता है।
ये बताता है कि विज्ञान को भी अपनी दार्शनिक मान्यताओं के प्रति सजग रहना चाहिए।
बिल्कुल। एक और बड़ा मजेदार कथन है समुद्री स्क्वाड के बारे में। वो कहते हैं,
हाँ हाँ वो वाला,
कि किशोर समुद्री स्क्वाड समुद्र में भटकता है एक चट्टान की तलाश में। जब उसे अपनी जगह मिल जाती है तो उसे अपने दिमाग की जरूरत नहीं रहती, इसलिए वो उसे खा जाता है।
और फिर वो तुलना करते हैं।
हाँ, कहते हैं ये कुछ कुछ कार्यकाल पाने जैसा है। अकेडमिक जीवन में दिमागी ठहराव पर एक चुटकी
और एक बहुत सीधा छोटा सा कथन, माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज।
हाँ, ये उनके पूरे भौतिकवादी नजरिए का निचोड़ है।
क्या उनके बारे में कुछ और रोचक बातें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में?
हाँ, वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो बड़े उत्साही नाविक थे, सेलिंग करते थे और अक्सर अपनी किताबों में समुद्री रूपकों का इस्तेमाल करते थे।
अच्छा।
उन्हें जैज संगीत का शौक था, पियानो भी बजाते थे, और जैसा मैंने कहा वो मुश्किल आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाने में यकीन रखते थे।
उनकी सार्वजनिक बहसें भी काफी होती थी।
हाँ, धर्म, फ्री विल, चेतना, इन मुद्दों पर वो पब्लिक डिबेट्स में खूब हिस्सा लेते थे। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे।
और उनकी दाढ़ी, वो तो उनकी पहचान बन गई थी।
हाँ हाँ, उनकी सफेद दाढ़ी उनके तर्कों जितनी ही यादगार थी।
तो अंत में अगर हम सोचें, डेनेट हमें एक बड़ी चुनौती देकर गए।
हाँ, एक गहरी चुनौती।
क्या हम खुद को, अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से एक प्राकृतिक जैविक मशीन के रूप में देखने को, स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या इसमें कुछ खोने का डर है?
या फिर क्या वैज्ञानिक समझ हासिल करने का मतलब हमेशा किसी चीज के रहस्य या जादू को कम करना होता है, या ये हमें सच्चाई के ओर करीब लाता है भले ही वो सच्चाई हमारी आरामदायक सोच से अलग हो?
बिल्कुल, ये वो सवाल है जिन पर डेनेट ने हमें सोचने पर मजबूर किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।